रसोई में इस वक्त खूब हलचल थी। बड़े से किचन में मसालों की खुशबू फैली हुई थी। घी में जीरे के तड़के की आवाज लगातार छनछन कर रही थी। अक्षरा ने अपने हाथों में दुपट्टा थोड़ा समेटा और कढ़ाई में सब्जी चलाते हुए बोली, रामू काका, दाल में थोड़ा और घी डाल दीजिए। राजस्थानी दाल बिना घी के अधूरी लगती है। रामू काका मुस्कुराए, बिटिया, आज तो आप पूरे हमारे अंदाज में खाना बना रही हैं। अक्षरा हल्का सा हंस पड़ी। आज सबकी पसंद का खाना बनाना है काका, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काउंटर पर कई तरह के पकवान तैयार हो रहे थे। एक तरफ दाल बाटी के लिए बाटियां तंदूर में सिक रही थीं, दूसरी तरफ कढ़ाई में गट्टे की सब्जी पक रही थी। साथ में केर सांगरी, लहसुन की चटनी, पापड़ और चूरमा भी बन रहा था। रसोई में काम करते करते अक्षरा कभी नमक चखती, कभी किसी बर्तन में झांक कर देखती कि सब ठीक पक रहा है या नहीं। उसी समय सुषमा देवी रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। अरे अक्षरा, तुमने तो पूरा खाना खुद ही बना डाला। अक्षरा तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं अकेली कहाँ बना रही हूँ, सब लोग मदद कर रहे हैं। रत्ना देवी भी आ गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा और खुश होकर बोली, आज तो घर में पुराने दिनों की खुशबू आ रही है। ऐसा खाना तो हमने बहुत वक्त बाद बनते देखा है। अक्षरा के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आ गई। थोड़ी देर बाद सब पकवान तैयार हो गए। डाइनिंग हॉल में बड़ी सी टेबल सजाई गई, चमकती प्लेटें रखी गईं, साथ में कटोरियां और चांदी के गिलास भी। सब लोग धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगे। रत्ना देवी सबसे पहले बैठी, फिर सुषमा देवी, शकुंतला, रम्या, विशाल, अदिति और आर्यन भी आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ भी आकर कुर्सी पर बैठ गया। अक्षरा ने खुद अपने हाथों से सबको खाना परोसना शुरू किया। वो एक एक करके सबकी प्लेट में बाटी रखती, ऊपर से घी डालती और फिर दाल डाल देती। आर्यन ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह अक्षरा, ये तो कमाल है, इतना टेस्टी खाना तो मैंने होटल में भी नहीं खाया। विशाल भी हंस पड़ा, सच कह रहा है आर्यन, ये गट्टे की सब्जी तो एकदम रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। रम्या ने चूरमा खाते हुए कहा, अक्षरा, ये आपने बनाया है, इतना अच्छा चूरमा मैंने कभी नहीं खाया। अदिति भी मुस्कुराकर बोली, अक्षरा, आप तो छुपी हुई शेफ निकली। सब लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे। रत्ना देवी ने दाल का स्वाद लेते हुए कहा, अक्षरा बेटा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, ये वही स्वाद है जो हमारे घर में पहले हुआ करता था। सुषमा देवी भी गर्व से बोली, सच में इतनी मेहनत की है इसने। अक्षरा सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार विश्वनाथ की तरफ चली जाती थी। विश्वनाथ चुपचाप बैठा खाना खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, ना तारीफ ना कोई मुस्कान, बस शांत चेहरा। अक्षरा के मन में हल्की सी बेचैनी हुई। सब लोग लगातार खाना और उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन विश्वनाथ बिल्कुल चुप था। थोड़ी देर बाद अक्षरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, खाना ठीक है? विश्वनाथ ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। बस इतना कहकर वो फिर से खाना खाने लगा। अक्षरा को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। आर्यन हंसते हुए बोला, अक्षरा, पापा को तो आप जानते ही हैं, इन्हें तारीफ करना नहीं आता। सब लोग हल्का सा हंस पड़े, लेकिन अक्षरा अभी भी विश्वनाथ को देख रही थी। उसने फिर धीरे से पूछा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? विश्वनाथ ने इस बार प्लेट से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। ठीक है, बस दो शब्द, फिर वो वापस खाने लगा। टेबल पर अचानक जैसे एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। अक्षरा की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। बाकी सब लोग अभी भी खाना खा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, लेकिन अक्षरा के कानों में बस वही दो शब्द गूंज रहे थे, ठीक है। इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना, सबकी तारीफ और विश्वनाथ के मुंह से बस इतना। रत्ना देवी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अरे बेटा, थोड़ा और दाल डालो मेरी प्लेट में। अक्षरा तुरंत संभल गई। जी आंटी, उसने फिर से सबको खाना परोसना शुरू किया, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। वो हर किसी की प्लेट में खाना डालती जा रही थी, पर उसकी नज़र बार बार विश्वनाथ पर ही चली जाती। विश्वनाथ अभी भी शांत बैठा खाना खा रहा था, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डाइनिंग हॉल में बाकी सबकी हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन अक्षरा के मन में एक अजीब सा खालीपन उतर आया था। थोड़ी देर बाद सबका खाना खत्म हो गया। सब लोग उठने लगे। आर्यन ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षरा, आज तो इतना खा लिया कि अब दो घंटे तक उठ नहीं पाऊंगा। सब लोग फिर से हंस पड़े। अक्षरा भी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र विश्वनाथ पर पड़ी। वो कुर्सी से उठ चुका था। उसने बिना कुछ कहे पानी का गिलास रखा और धीरे से बाहर जाने लगा। अक्षरा की नज़र कुछ पल तक उसी पर टिकी रही। डाइनिंग हॉल में आवाज़ें थीं, हंसी थी, लोगों की बातें थीं, लेकिन अक्षरा और विश्वनाथ के बीच जैसे एक अजीब सा ठहराव आ गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत सी अनकही बातें छुपी हुई थी। डाइनिंग हॉल अब लगभग खाली हो चुका था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों की ओर जा चुके थे। टेबल पर बस कुछ खाली प्लेटें और कटोरियां रह गई थी। नौकर धीरे धीरे सब समेट रहे थे। अक्षरा कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके मन में अभी भी वही बात घूम रही थी, विश्वनाथ का ठंडा सा जवाब। ठीक है, उसने गहरी सांस ली। फिर मन ही मन सोचा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इतने साल बाद मिले हैं और आज भी वही दूरी। उसने तय किया कि आज रात वो आराम से विश्वनाथ से बात करेगी। बचपन की बातें, पुरानी यादें, शायद माहौल हल्का हो जाए। अक्षरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। वो सीधे विश्वनाथ के कमरे के सामने आकर रुक गई। उसने हल्के से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर लाइट बंद थी। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अक्षरा थोड़ी हैरान हुई। शायद सो गया, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आया। कुछ पल वो वहीं खड़ी रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अजीब इंसान है, दिन भर गुस्से में और अब इतनी जल्दी सो भी गया। उसने धीरे से दरवाजा वापस बंद कर दिया। अब वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ी। कॉरिडोर लंबा और शांत था। अक्षरा धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक सामने से कोई तेजी से आया। धप, अचानक दोनों टकरा गए। अक्षरा थोड़ा लड़खड़ा गई, सॉरी। लेकिन सामने से भी वही आवाज आई, ओह सॉरी। अक्षरा ने ऊपर देखा, सामने अदिति खड़ी थी। अदिति ने हैरानी से पूछा, अरे अक्षरा, आप अभी तक जाग रही हो? अक्षरा ने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही। अदिति ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, आप पापा के कमरे के पास क्या कर रही थी? कॉरिडोर में फिर से वही सन्नाटा उतर आया। अक्षरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके होंठ हल्के से खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। वहीं कॉरिडोर की हल्की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखती रह गई।